आज की बात।
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम आज की बात में आपका स्वागत है। हसन अब्बास का सलाम स्वीकार करें। आज के कार्यक्रम में हम भारत में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख बाबा गुरमीत सिंह को अदालत की ओर से दोषी ठहराए जाने और उसके बाद के प्रकरण की चर्चा करेंगे। हमारे साथ रहें। भारत के राज्य हरियाणा में धार्मिक संस्था डेरा सच्चा सौदा प्रमुख संत गुरमीत सिंह राम रहीम को 15 साल पुराने यौन शोषण मामले में सीबीआई अदालत ने 10 साल कैद की सजा सुनाई। उन्हें शुक्रवार को दोषी करार दिया गया था। उन्हें दोषी ठहराए जाने के फौरन बाद उनके समर्थकों ने जो हिंसक कार्रवाइयां की उसके कारण लगभग 3 दर्जन लोग मारे गए, 250 से अधिक घायल हुए और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। सेना और पुलिस बल की फायरिंग में अधिकतर लोग मारे गए। इन हिंसक घटनाओं के चलते दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में कानून व्यवस्था चरमराई सी दिखाई दी। इस पूरे प्रकरण ने कई सवालों को जन्म दिया है। सबसे अहम सवाल यह है कि क्या धर्म और आस्था के नाम पर कानून तोड़ा जा सकता है? सरकारें इस प्रकार के मामलों में ढीला रवैया क्यों अपनाती हैं? क्या भीड़ के सामने कानून बौना बन जाता है? और ये भी कि राजनीतिक दलों में इस प्रकार के स्वयंभू धर्मगुरुओं के विरुद्ध कार्यवाही की इच्छा शक्ति क्यों नहीं होती? भारत के प्रख्यात टीकाकार प्रभुनाथ शुक्ल से हमने ये पूछा कि भीड़ इतनी क्यों बेकाबू हो जाती है कि कानून को हाथ में लेने से भी नहीं हिचकती। उन्होंने कहा,
देखिए अब्बास जी, मूल बात ये है कि जो धर्म है और आस्था है जो है, वो कोई भी धर्म हो, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, धर्म को लोग बड़े सेंसिटिव विजन से देखते हैं। जो है संवेदनशील नजरिया धर्म को लेकर होता है और उसका जो ये संत होते हैं, बाबा होते हैं और तमाम तरह के जो धर्माधीश मठाधीश होते हैं उसका गलत उपयोग कराते हैं। जो है दूसरी बात, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, जो संस्थाएं जो है जिनका कानून व्यवस्था पर नियंत्रण रहता है, वो कहीं न कहीं जो है इसे लेकर जो है वो लचीला रुख अपनाती है। पंजाब और हरियाणा की हाईकोर्ट बार बार आदेश दे रही थी कि वहाँ धारा 144 लागू है पंचकुला में, और आदेश दिया जा रहा था कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, लेकिन बावजूद इसके इतनी शिथिलता बरती गई कि ये स्थितियाँ पैदा हो गई। और कोर्ट ने यह भी कहा कि राजनीतिक सियासी लाभ के लिए यह मौका दिया गया है जिससे हिंसा बरती गई।
एक टीवी कार्यक्रम में स्वराज इंडिया के प्रमुख योगेंद्र यादव का कहना था कि स्वयंभू बाबाओं के खेल में सभी राजनीतिक दल शामिल होते हैं और वे उनके समर्थकों से वोट लेने के लिए उनसे सौदे करते हैं।
सारी पार्टियां इस खेल में शामिल हैं। 2004 में इनेलो की सरकार थी, इन्होंने खुल के डील किया, सीबीआई जांच तक नहीं होने। 2004 के बाद कांग्रेस आती है, कांग्रेस को 2009 में डेरे का खुला समर्थन मिला, इन्होंने डील किया कांग्रेस वालों ने, और कांग्रेस हर तरह की मदद दी। 2014 में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने डील किया डेरे से। खुल्लम खुल्ला डील होते हैं, छुपे हुए डील नहीं है, अखबारों के फ्रंट पेज पे छप रहे होते हैं डील। इस बार डेरा उसको समर्थन करेगा, नहीं इस बार डेरा उसको समर्थन करेगा। और उसके एवज में जैसे ही मुख्यमंत्री बने खट्टर जी, वो पूरा अपना कैबिनेट लेके गए उनके दर्शन करवाने के लिए, बाबा जी को थैंक यू बोलने के लिए। वो व्यक्ति उस वक्त भी रेप का एक्यूज था। पूरा हरियाणा जानता है कि क्या सच्चाई है उसकी, कोई छुपी हुई नहीं है। डेरे में क्या हो रहा था, जो डेरे के लोग सड़कों पे हैं, मैं इनको दोषी नहीं मानता, ये साधारण लोग हैं, कोई प्रोफेशनल गुंडे नहीं हैं, बहकाए हुए आए हुए हैं। लेकिन डेरे के अंदर डेरे के मैनेजर क्या कर रहे थे, डेरे में किस तरह का माफिया का माहौल था, किस तरह के क्राइम हो रहे थे, पूरा हरियाणा 15 साल से जानता है।
उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने एक टीवी चर्चा में बेकाबू भीड़ के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए कहा,
देखिए मेरे विचार से इसमें जो फेलियर है वो पूरे सरकारी तंत्र का है। ये पॉलिटिकल लीडरशिप को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, ब्यूरोक्रेसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और पुलिस को तो जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी। घटनाक्रम मालूम था कि किस तरह से होगा और उसके लिए प्लानिंग करने के लिए पूरी काफी समय था। पर असल में मुश्किल यह है कि आजकल देखिए, ये असली कारण यह है कि जब भी इलेक्शन होता है तो सारी पार्टी के लोग ये बाबा के पास जाते हैं कि भाई अपने फॉलोअर से कह दो कि हमें वोट दे दो। तो अब चूंकि इनके खिलाफ एक्शन होना है तो एक तरफ तो हम इनसे वोट भी मांगते हैं, दूसरी तरफ इनसे एक्शन भी लेना है। तो भाई एक्शन इतना लेना कि थोड़ा कहने को हो जाए कि हमने कार्रवाई की, पर इतना ज्यादा मत लेना कि बाबा गुरमीत नाराज हो जाए और फिर अगले इलेक्शन में हमको हरवाने हमारे वो इनके वोटर हमारे। तो असली असली जो दिक्कत है वो ये मानसिक दिक्कत है कि हम इनके खिलाफ एक्शन लें या ना लें, क्योंकि कंसिडरेशन क्या है, पॉलिटिकल कंसिडरेशन। होता क्या है कि राजनीतिक स्तर से कोई क्लियर डायरेक्शन, कोई स्पष्ट निर्देश नहीं जाते। अगर पॉलिटिकल डायरेक्शन क्लियर हो, फर्म हो, तो मजाल है कि ब्यूरोक्रेसी काम न करे, मजाल हो कि पुलिस काम न करे।
धर्मगुरु आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य ने एक टीवी चर्चा में कहा कि धर्म तो कानून के पालन का आदेश देता है और इस समय जो कुछ धर्म के नाम पर किया जा रहा है वो धर्म है ही नहीं।
यहाँ धर्म है ही नहीं, धर्म के नाम पर जो खेल रचा जा रहा है उसको लोगों को समझना चाहिए। धर्म के नाम पर जितने भी लोगों पे आप आक्षेप लगा रहे हैं, उन्होंने धर्म का उपयोग करके, धर्म का मुखौटा पहनकर ये सारा खेल रचा। आज से नहीं, अनंत अनादि काल से ये खेल रचते आए हैं लोग। सीता का अपहरण भी रावण ने साधु बन के ही किया था। जनता को, समाज को सब समझ में आता है कौन खराब है कौन ठीक है, परंतु लोगों का सहारा लेकर जिन लोगों ने खेल रचा है ये उनको समझ में आनी चाहिए कि लोगों ने किस प्रकार के, जो बच्चा लेके औरत वहां बैठी है, बुजुर्ग आदमी बैठा है, वो बुजुर्ग आदमी की लाश हमने भी कुछ देर पहले देखी, क्या वो इस उद्देश्य को लेकर नहीं आया था? उसकी पीठ के पीछे जो कार्य हुआ है, जिन लोगों ने किया है, आज सरकार का दायित्व है कि वो आगे लाए, वो लाके लागे जिससे अध्यात्म का नाम, धर्म का नाम खराब।
हमने प्रभुनाथ शुक्ल से पूछा कि गुरमीत सिंह जैसे बाबाओं के इतने अधिक शक्तिशाली होने का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा,
घर में लोग ईश्वर का वास देखते हैं और ऐसे बाबा अपने को स्वयं हूँ, किसी भी धर्म के बाबा हूँ, मैं एक धर्म की बात मैं नहीं करता हूँ, मैं सभी धर्मों की बात करता हूँ। ऐसे प्रकरण आए भी हैं, चाहे कोई भी धर्म हो, दुनिया का कोई भी धर्म हो, धर्म कोई ऐसा गलत राह या गलत नीति नहीं सिखाता है, लेकिन ऐसे जो बाबा है जो है जो धर्म के आड़ में और अपने जो समर्थक होते हैं, जो अनुयायी होते हैं, उनको एक ऐसी चीज करते हैं जो है कि वो अंधे भक्त होके जो है इस तरह के काम करते हैं, और इस तरह के जो है धर्मों में लोग अंधे हो जाते हैं, उसका लाभ जो है ये सीधे लोग जो है कि बाबा मुल्ला और धर्मगुरु उठाते हैं जो है, और ये सबसे गलत नीति है। जैसे स्पष्ट आ गए आपस में, धर्म हमें आपस में बैर करना नहीं सिखाता है, धर्म हिंसा नहीं है, असली है कि धर्म हिंसा का कोई स्थान ही नहीं है।
प्रकाश सिंह इस प्रकार की भीड़ को नियंत्रित करने के तरीकों और इस सिलसिले में पाई जाने वाली चुनौतियों के बारे में कहते हैं,
देखिए चैलेंज तो होता है, पर कोई ऐसा नहीं था कि इस चैलेंज को मीट नहीं किया जा सकता। इसको जो भीड़ पंचकुला में इकट्ठी हो गई है, 2 लाख या 1.5 लाख जो भी है, अगर प्रभावी कदम उठाए गए होते तो ये भीड़ 25,000 और 50,000 तक सीमित रह जाती। फिर 25,000 आदमी को हैंडल करना अपेक्षाकृत आसान होता इनको। अच्छा, जो कुछ कार्रवाई हुई बड़े अफसोस की बात है कि वो एग्जीक्यूटिव की तरफ से नहीं हुई बल्कि हाईकोर्ट ऑफ हरियाणा के निर्देश से हुई। हाईकोर्ट ऑफ हरियाणा ने जब लताड़ लगाई और कहा कि साहब सरकार क्या कर रही है, हम इस तरह के हिंसात्मक कार्रवाई नहीं होने देंगे, जब लताड़ लगाई है तब ये लोग जगे हैं और तब थोड़ा सा सक्रियता आई। धारा 144 आप लगाते हैं, पर आपने उसको इन्फोर्स किया, आपने लागू नहीं किया। अच्छा, धारा 144 के बारे में मैंने पता किया, धारा 144 में बहुत बड़ा लैक्यूना था। तो मतलब ये लोग किस तरह के अधिकारी हैं, डीसीपी हैं, क्या करते हैं, इनको आदेश जारी करने नहीं आता, आदेश जो जारी करते हैं उसको लागू नहीं करते और इस तरह की भीड़ इकट्ठा होने देते हैं। उसके बाद मान लीजिए भीड़ इकट्ठा हो गई, चलिए आपके नालायकियत से, आपके निकम्मेपन से भीड़ इकट्ठा हो गई, अब कम से कम उसको सवेरे से ही उसको खदेड़ना शुरू कर, और खदेड़ नहीं सकते तो चलिए फुटबॉल ग्राउंड है, हॉकी ग्राउंड है, आप इनको इकट्ठा करते और घेर लेते कि भाई आप कहीं यहां से बाहर नहीं जा सकते। जो कुछ उनके पास हथियार है, लाठी डंडा बरछा जो कुछ भी है, उनसे वहीं वो रखवा लिए गए। उसके बाद उनको जबरदस्ती बसेस में, ट्रेन में बैठा के जबरदस्ती और घेरे में करके बैठा के उसके बाद इनको डिस्पैच कर देते। तो ये सब तो हुआ नहीं। जो ये कहा जा रहा है कि बाबा राम रहीम ने कहा कि सब लोग शांति बनाए रखें, सब तो पब्लिक को दिखाने की बात, जनता को बेवकूफ बनाने की बात है।
बहरहाल ये प्रक्रिया खतरनाक है, कभी किसी बाबा के समर्थन में, कभी किसी राजनीतिक दल के समर्थन में, और कभी किसी धार्मिक आस्था के नाम पर अगर भीड़ को मनमानी करने दी गई तो फिर देश के प्रजातांत्रिक मूल्यों में लोगों का विश्वास डिगने लगेगा। राज्य सरकारों और राजनीतिज्ञों को भी ये बात समझनी होगी, वरना फिर जब भी किसी प्रभावी व्यक्ति के खिलाफ अदालत कोई फैसला देगी तो सरकारों को सेना तैनात करनी पड़ेगी, सरकारी संस्थानों और स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ेगा और दंगाइयों जैसा व्यवहार करती भीड़ को देखते रहना होगा।